आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अन्विता कुमारी और हम पढ़ रहे थे आपकी पुस्तक क्षितिज का पाठ 7, बचपन के दिन, जिसकी लेखिका हैं महादेवी वर्मा। तो स्टूडेंट्स, हम ये संस्मरण पढ़ चुके थे जिसमें लेखिका ने अपने बचपन के दिन को याद करके अपनी यादें लिखी थी। अब हमें करने हैं इसके प्रश्नोत्तर, जिसके लिए आप सभी अपनी अपने बुक्स के पेज नंबर 74 पर आ जाइए। ठीक है, तो यहाँ पेज नंबर 74 पे पढ़ती हूँ पहला प्रश्न। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। इस कथन के आलोक में आप यह पता लगाएं कि क, उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी, और ख, लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं। तो पहले हम लिखेंगे कि उस समय कैसी स्थिति थी। लेखिका का जन्म हमने पढ़ा था 1900 के आसपास हुआ था, तो इसीलिए हम लिखेंगे उस समय 1900 के आसपास भारत में लड़कियों की दशा उतनी अच्छी नहीं थी। अक्सर उनके जन्म लेते ही उन्हें मार दिया जाता था, और अगर मारा नहीं जाता था, किसी लड़की का जन्म हो भी जाता था, तो घर में शोक छाया रहता था, सब दुखी हो जाते थे, और या फिर लोग उनको अच्छे से पढ़ाते लिखाते नहीं थे, उनका पालन पोषण अच्छा नहीं करते थे, सोचते थे कि इनको घर के कामों में ही लगा दिया जाए, पढ़ाई लिखाई से दूर रखा जाए और भोजन कम दिया जाए। ये सारी लोगों की उस समय मानसिकता थी। इसीलिए महादेवी वर्मा जी ने ये लिखा है कि मैंने वो सब नहीं सहा जो बाकी लड़कियों को सहना पड़ता है, क्योंकि उनकी तो बहुत खातिर हुई थी, सभी लोग बहुत खुश हुए थे और बड़ा उन्हें लाड़ प्यार मिला था। आगे देखिए ख वाला, की लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं। इसमें क्या लिखेंगे कि लड़कियों के संबंध में परिस्थितियां आज थोड़ी तो बदली हैं, क्योंकि जो लोग अब पढ़े लिखे हैं वो इस लड़के लड़की के बीच जो भेदभाव है, जो अंतर है, इसे कहीं ना कहीं कम कर रहे हैं, और लोग इतने जागरूक हो रहे हैं कि वो बेटियों का स्वागत भी, बेटियों के जन्म पे भी वैसा ही उल्लास प्रकट करते हैं जैसे लड़के के जन्म पे करते हैं। लड़कियों को पढ़ाया लिखाया भी जा रहा है, हर जगह लड़कियां लड़कों से कंधे मिलाकर आगे बढ़ रही हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये जो भेदभाव है वो पूरी तरह समाप्त नहीं हो पाया है। आज भी भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, जहां समाचार मिलता है कि गर्भ में लड़की है, वहां उसे कई बार गर्भ में ही मार दिया जाता है। इसी वजह से हमारे देश में लड़के लड़कियों का अनुपात भी सही नहीं है, और लड़कियां जो हैं वो कितनी जरूरी हैं हमारे समाज के लिए, इस बात को कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं। लोगों की मानसिकता काफी लोगों की बदली है, लेकिन कुछ लोगों की अभी भी पुरानी मानसिकता के साथ ही वो जी रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 देखिए। लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। इसलिए आप लिखेंगे लेखिका की जो रुचि थी वो उर्दू फारसी वाली भाषा में थी ही नहीं, उन्हें ये कठिन लगता था, इसीलिए उन्होंने कहा कि मुझे तो लगता ही नहीं कि मैं उर्दू फारसी कभी सीख सकती हूँ। जब उर्दू फारसी पढ़ाने के लिए उनके मौलवी साहब आते थे तो वो अक्सर इधर उधर छुप जाया करती थी, और फिर मौलवी साहब ने भी आना बंद कर दिया, पढ़ाना बंद कर दिया, और वो उर्दू फारसी ना सीख कर हिंदी और संस्कृत की तरफ मुड़ गई। आगे देखिए प्रश्न संख्या 3। लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है, यानी अपनी माँ से जुड़ी किन विशेषताओं के बारे में लेखिका ने हमें पाठ में बताया है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, लेखिका ने बताया है कि उनकी माँ को हिंदी काफी अच्छे से आती थी, उन्हें हिंदी से प्रेम भी था, उन्हें गाने का भी शौक था, वो अक्सर मीरा के पद गुनगुनाया करती थी, खुद भी कुछ टुकबंदी किया करती थी या पद लिखा करती थी, हिंदी और संस्कृत की अच्छी खासी जानकार थी, और इसी वजह से महादेवी पर भी अपनी माता का कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ा और उन्होंने हिंदी और संस्कृत भाषा के प्रति रुचि विकसित कर ली, साथ ही उन्हें लिखने और गाने का शौक भी हो गया। महादेवी जी की जो माता थी वो धार्मिक स्वभाव की भी महिला थी, है ना। कैसे पता चला, क्योंकि उन्होंने बताया है वो अक्सर पूजा पाठ किया करती थी और गीता पढ़ा करती थी, सुबह सुबह उठ के कृपा निदान पंछी बन बोले ये प्रभाती गाती थी, शाम को भी मीरा के पद गाती थी और धार्मिक पदों को वो लिखा भी करती थी। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 4। जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा क्यों कहा है? इसमें क्या लिखेंगे? जब लेखिका ने जवारा के नवाब के परिवार के साथ अपने संबंधों को बताया है तो उन्हें ये सपना जैसा लग रहा है। क्यों? क्योंकि उन लेखिका का जो परिवार था और नवाब साहब का जो परिवार था उनके धर्म अलग थे, है ना। लेखिका हिंदू परिवार से संबंध रखती थी और वो नवाब साहब मुस्लिम धर्म से संबंधित रखते थे, फिर भी उनके बीच भाषा जाति धर्म कोई भी चीज उनके बीच में बाधा नहीं बनी और वो लोग एक ही परिवार की तरह रहते थे। एक दूसरे के परिवार की जरूरत में सहायता करना, सारे त्योहारों को मिलकर मनाना, खुशी और गम को बांटना, जन्मदिन या कोई भी खास अवसर मिलकर मनाना, ये सारी चीजें वो अक्सर किया करते थे। एक दूसरे को जो बच्चे थे वो चाची या ताई कहकर बुलाते थे, है ना। और वो लोग भी आपस में देवर दुल्हन भाभी ये वाले रिश्ते निभाते थे, जिससे पता चलता था कि उनके बीच में कितनी आत्मीयता थी। लेकिन आज जहां सांप्रदायिकता इतनी बढ़ती जा रही है, वहां ऐसे संबंधों का दिखना दुर्लभ होता जा रहा है। इसीलिए लेखिका ने कहा कि जैसे हमारे परिवार साथ में रहते थे वो आज के समय में केवल एक सपने की तरह ही है, ऐसा शायद अब संभव नहीं है। लेकिन अगर ये सपना सच हो पाता, यानी जैसे हम लोग रहते थे वैसे अगर वाकई में आज सब लोग रह रहे होते तो स्थिति हमारे देश की काफी अच्छी होती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रचना और अभिव्यक्ति। यहाँ रचना और अभिव्यक्ति में आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं। पहला देखिए प्रश्न संख्या 5। ज़ेबुनिसा महादेवी वर्मा के लिए बहुत काम करती थी। ज़ेबुनिसा के स्थान पर यदि आप होते या होती तो महादेवी से आपकी क्या अपेक्षा होती? तो जैसे उन्होंने बताया कि सुभद्रा कुमारी के कॉलेज पूरा करके जाने के बाद एक दूसरी लड़की लेखिका के कमरे में आके रहने लगी जो उनका अक्सर काफी काम कर देते थे। अगर आप भी उसके स्थान पे होके ऐसा थोड़ा बहुत काम लेखिका का करते तो आप बदले में क्या कुछ अपेक्षा रखते, उम्मीद रखते? तो इसमें आप क्या कहेंगे कि अगर मैं ज़ेबुनिसा के स्थान पर होती या होता तो मैं चाहता कि मुझे उनसे प्रेम मिले, सम्मान मिले, मित्रता मिले, हमारी दोस्ती इतनी गहरी हो जाए कि किसी भी कारण वो टूट ना पाए। मैं उनसे एक बड़ी बहन की तरह प्रेम पाना चाहती या फिर एक सहेली की तरह प्रेम पाना चाहती। ठीक है, मैं उनकी छोटी बहन की तरह उनके सारे कामों में मदद करती, उनकी कविताएं भी सुनती, पढ़ाई में जब मुझे कोई दिक्कत होती तो उनसे पूछ लेती, सहायता लेती, और इस तरह हम लोग आपस में बहुत मिलजुल कर और बहुत ही प्यार से समय बिताते। ठीक है, और इसमें आप अपनी तरफ से कुछ जोड़कर लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 6। महादेवी वर्मा को काव्य प्रतियोगिता में चांदी का कटोरा मिला था। अनुमान लगाइए कि आपको इस तरह का कोई पुरस्कार मिला हो और वह देश हित में या किसी आपदा निवारण के काम में देना पड़े तो आप कैसा अनुभव करेंगे या करेंगी? तो इसमें क्या लिखेंगे आप? यदि हमें चांदी के कटोरे या फिर ऐसा ही कोई कीमती पुरस्कार मिलता तो हम भी उसे देश हित में या आपदा के समय खुशी खुशी समर्पित कर देते, क्योंकि देश और देशवासियों से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। अगर मैं अपने किसी पुरस्कार को देश को दे पाती, समर्पित कर पाती तो मेरी खुशी दुगनी हो जाती, है ना। मैं इसमें गर्व महसूस करती या गर्व महसूस करता, ऐसा करके आप इसका जवाब लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7। लेखिका ने छात्रावास के जिस बहुभाषी परिवेश की चर्चा की है उसे अपनी मातृभाषा में लिखिए। तो इस प्रश्न में आपको अपनी भाषा, जो भी आपकी भाषा है ना, हिंदी, भोजपुरी, उर्दू, बंगाली, मराठी, पंजाबी, उसमें लिखना है। परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी आप अपनी कॉपी में इसे लिख सकते हैं, क्योंकि आपको अपनी मातृभाषा बोलनी, पढ़नी, लिखनी, समझनी आनी चाहिए। ठीक है, तो ये प्रश्न आप स्वयं करेंगे। आगे देखिए प्रश्न संख्या 8। महादेवी जी के इस संस्मरण को पढ़ते हुए आपके मानस पटल पर भी अपने बचपन की कोई स्मृति उभर कर आई होगी, उसे संस्मरण शैली में लिखिए। अब आपको क्या बताना है कि जो महादेवी वर्मा जी ने संस्मरण लिखा है इसे पढ़कर आपको क्या याद आया? कुछ ना कुछ पढ़ते समय आपको भी आपकी बचपन की घटनाएं याद आने लगी होंगी। तो आपको जो भी घटनाएं या फिर जो भी बातें अपने बचपन की याद आई हैं, उसे आप लिखेंगे एक संस्मरण शैली में ही, यानी जैसे लेखिका ने लिखा है ना कि कुछ याद करते हुए लिख रहे हैं, वैसे ही आपको भी लिखना है। तो आप क्या लिख सकते हैं कि मुझे याद आ रहा है वो दिन जब हमारे विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था और उस दिन बहुत तेज बरसात हो रही थी, फिर भी सभी विद्यार्थी और शिक्षक स्कूल में मौजूद थे। सभी के चेहरे पे गर्व, उत्साह और उल्लास दिखाई दे रहा था कि हम देश की आजादी को मनाने के लिए एक साथ एकत्रित हुए हैं। हमारे जो मुख्य अतिथि थे उनके सामने मुझे कविता का पाठ करना था। मेरी हिंदी की अध्यापिका ने मुझे इसका अभ्यास भी कई बार करवाया था, लेकिन फिर भी स्टेज पे जाते समय या मंच पे जाते समय मुझे एक भय का अनुभव हो रहा था, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी भी मंच पे कुछ सुनाया नहीं था, कुछ बोला नहीं था। लेकिन जैसे ही मैं मंच पर पहुंचा या मंच पर पहुंची, जैसे ही मेरा नाम बुलाया गया, तो मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। जैसे तैसे मैं हिम्मत बांधकर मंच पे गया या मंच पर गई, और जब दो लाइनों में ही या दो लाइन पढ़ते ही बच्चों ने, शिक्षकों ने और अतिथियों ने तालियां बजाना शुरू कर दिया, तो मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया। अब मैंने और भी अधिक जोश के साथ कविता सुनाना शुरू कर दिया, और जब मेरी कविता 10 मिनट बाद पूरी हुई तो पूरा हॉल और जितने लोग वहां मौजूद थे सभी के चेहरों पे खुशी दिख रही थी। हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था। और उसके बाद मुझे अतिथि ने अपने पास बुलाकर एक पुरस्कार भी दिया। इससे मुझे सुखद अनुभूति हुई, खुशी भी हुई और गर्व का आभास हुआ, और मुझे ये हिम्मत मिल गई कि आगे से अब मैं कोई भी किसी भी तरीके के कार्यक्रम में हिस्सा ले सकती हूँ या ले सकता हूँ। और उस दिन के बाद से आज का समय है जब मैं हमेशा मंच पे जाने के लिए उत्साहित रहता हूँ या उत्साहित रहती हूँ और कविता सुनाने के लिए तैयार रहती हूँ। ठीक है, इस तरीके से एक घटना का मैंने ये उदाहरण दिया आपको। आप कुछ और भी इसकी जगह लिख सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसा दिन याद कर सकते हैं जब आप अपने सहेलियों के साथ कहीं घूमने गए थे, अपने दोस्तों के साथ किसी खास जगह घूमने गए थे, है ना, या किसी शादी विवाह के अवसर में कहीं एकत्रित हुए थे। कुछ भी आप एक चीज, एक घटना संस्मरण शैली में लिख सकते हैं। संस्मरण शैली यानी याद करते हुए। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 9। महादेवी ने कवि सम्मेलनों में कविता पाठ के लिए अपना नाम बुलाए जाने से पहले होने वाली बेचैनी का जिक्र किया है। अपने विद्यालय में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते समय आपने जो बेचैनी अनुभव की होगी, उस पर डायरी का एक पृष्ठ लिखिए। अब देखिए, जैसे यदि आपका कोई कार्यक्रम है जो विद्यालय में होना है और आपका जब नाम नहीं बुलाया जाता जब तक, तो आपको एक बेचैनी हो रही होती है ना। कुछ बच्चों को लग रहा होता है कि जल्दी से हमारा नाम बुला लिया जाए, और कुछ को लग रहा होता है कि पता नहीं कैसे हम बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे ना, एक हल्का सा डर, एक नर्वसनेस सी महसूस हो रही होती है। तो आपको जो भी महसूस होता है उसे एक डायरी के पेज की तरह आपको लिखना है। ठीक है, तो डायरी का पेज कैसे लिखते हैं? बहुत ही आसान होता है। पहले आप लेफ्ट साइड में एक डेट लिखेंगे। ठीक है, कोई भी डेट डाल सकते हैं, चाहे आज की डाल दीजिए, चाहे पुरानी कोई डेट डाल दीजिए, कोई भी डेट आप डाल सकते हैं। उसके बाद आप नीचे लिखेंगे, आज हमारे विद्यालय में गायन प्रतियोगिता का आयोजन है, बहुत से अतिथि, शिक्षक और सभी छात्र छात्राएं हॉल में पधारे हुए हैं। मेरे सामने मेरे माता पिता, मेरे दोस्तों के माता पिता और बहुत से परिचित लोग बैठे हुए हैं। मैं मंच के पीछे अपने नाम बुलाए जाने की प्रतीक्षा में बैठी हूँ या बैठा हूँ। मुझे भी गाना गाना है, हालांकि मैं पहले भी मंच पे आता रहा हूँ या आती रहा हूँ या फिर ऐसी प्रतियोगिता में भाग लेता रहा हूँ, फिर भी न जाने क्यों आज मुझे एक अलग तरह की बेचैनी महसूस हो रही है, एक डर लग रहा है, मेरे पैर जैसे कांप रहे हैं। जैसे जैसे मेरा नाम बुलाने का समय पास आता जा रहा है, मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही है, मेरी दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई है कि ये मुझे सुनाई दे रही है। अचानक से मेरा सारा ध्यान सिर्फ इसी चीज पे आ गया है कि कब मेरा नाम बुलाया जाएगा, कहीं मैं इतने सारे लोगों के बीच अपना गाना ना भूल जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि इन लोगों को मेरा गाना पसंद ही ना आए। ऐसे न जाने कितने विचार मेरे दिमाग में आए जा रहे हैं। लीजिए, अब मेरा नाम बुला लिया गया है, मैं स्वयं को संभाल कर आगे बढ़ रही हूँ और अब फिर से मुझे मेरा पुराना आत्मविश्वास मिलता जा रहा है। अब मैं जाऊंगी और इतना अच्छा गाकर आऊंगी कि सभी लोग तालियां बजाने पे मजबूर हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप, या फिर आगे कुछ और भी अपने हिसाब से जोड़कर आप लिख सकते हैं। मैंने आपको ये मोटी मोटी एक हिंट दे दी है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। भाषा अध्ययन, तो भाषा अध्ययन जैसे कि आपको पता है इसमें होते हैं आपके व्याकरण संबंधी प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ आपको चार प्रश्न दिए गए हैं। पहला देखिए, प्रश्न संख्या 10, पाठ से निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए। यहाँ आपको 5 शब्द दिए गए हैं और आपको इनके विलोम, विलोम यानी जो उल्टे होते हैं, ठीक है, वो ढूंढ के लिखने हैं। तो पहला है विद्वान, विद्वान का विलोम पाठ में क्या दिया है, मूर्ख। अनंत, अनंत का विलोम शब्द हो जाएगा अंत। निरअपराधी, इसका विलोम शब्द होगा अपराधी। जो महादेवी वर्मा ने कहा ना कि अपराधी की भांति वो मेरा हाथ पकड़कर सारे हॉस्टल में घुमा लाई, ऐसे ही है दंड। तो दंड का विलोम शब्द पाठ में आया है पुरस्कार, है ना, कि कितनी बार महादेवी वर्मा ने पुरस्कार जीता था। अब पांचवा शब्द है शांति, जिसका विलोम आप विवाद या अशांति लिख सकते हैं। ठीक है, फिर से बोल दे रही हूँ, विद्वान का मूर्ख, अनंत का अंत, निरअपराधी का अपराधी, दंड का पुरस्कार, अशांति का अशांति या विवाद। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आइए, पेज नंबर 75 पर, प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग प्रत्यय अलग कीजिए और मूल शब्द बताइए। जैसे एक इन्होंने यहाँ पे आपके लिए करके दिया हुआ है और बाकी 5 शब्द आपको करने के लिए दिए गए हैं। तो पहला क्या दिया है, निरारी, तो इसका उपसर्ग होगा निर, मूल शब्द होगा आहार और प्रत्यय होगा ई। ठीक है, उपसर्ग होते हैं जो मूल शब्द के पहले लगते हैं, प्रत्यय होते हैं जो मूल शब्द के बाद में लगते हैं, और मूल शब्द जो बीच का, जिसका एक खुद में एक अर्थ होता है, वो होता है मूल शब्द। ठीक है, तो पहला शब्द देखिए, सांप्रदायिकता। ठीक है, सांप्रदायिकता, इसमें उपसर्ग कुछ भी नहीं है और मूल शब्द इसका है संप्रदाय। ठीक है, संप्रदाय और प्रत्यय है इक और ता, दो प्रत्यय इसमें लगे, इक और त, संप्रदाय इक ता। अगला शब्द है अप्रसन्नता, तो इसमें उपसर्ग है अ, मूल शब्द है प्रसन्न और प्रत्यय है ता। ठीक है, उपसर्ग अ, मूल शब्द प्रसन्न और प्रत्यय त। अपनापन, अपनापन में कोई उपसर्ग नहीं है, मूल शब्द है अपना और प्रत्यय है पन। किनारीदार, किनारीदार में भी कोई उपसर्ग नहीं है, मूल शब्द है किनारी और प्रत्यय है दार। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता में उपसर्ग होगा स्व, ठीक है, मूल शब्द होगा तंत्र और प्रत्यय होगा त, तो स्वतंत्रता। अगले प्रश्न पे आइए, प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित उपसर्ग प्रत्ययों की सहायता से दो दो शब्द लिखिए। यहाँ पे आपको 5 उपसर्ग दिए गए हैं और 5 प्रत्यय दिए गए हैं, इनसे आपको नए शब्द बनाकर लिखने हैं। ठीक है, तो पहला है आपका अन, अन से आप कौन कौन से शब्द बना सकते हैं बताइए। अन से आप बना सकते हैं अनादर, अन इसमें हो जाएगा उपसर्ग और आदर हो जाएगा मूल शब्द, ऐसी एक लिख सकते हैं आप अनमना। दूसरा है अ, अ से दो शब्द बनाने हैं, असफल एक बना दीजिए असफल, और दूसरा बना दीजिए अपठित। तीसरा उपसर्ग सत, हाँ तो सत से आप बना सकते हैं सत्कर्म और सतपथ। ठीक है, अगला है स्व, स्व से बना सकते हैं आप स्वाधीन और स्वराज्य। फिर है दुर, दुर से बना सकते हैं आप एक दुराचार, ठीक है, दुराचार और दुर्लभ। अब आते हैं प्रत्यय पे, तो प्रत्यय है दार, तो एक लिखेंगे आप इसका ईमानदार और एक हिस्सेदार, ईमानदार और एक हिस्सेदार। अगला है हार, हार के साथ आप बनाएंगे पालनहार, तारनहार। वाला, वाला का बना सकते हैं सब्जी वाला, मिठाई वाला, सब्जी वाला, मिठाई वाला। अनिय, अनिय एक बना सकते हैं पठनीय और एक दर्शनीय। अगला देखिए प्रश्न संख्या 13, पाठ में आए सामासिक पद छांटकर विग्रह कीजिए। जैसे पूजा पाठ का हो जाएगा पूजा और पाठ, ठीक है, ऐसे ही आपको बताने हैं। तो एक हो जाएगा परम धाम, जो होता है ना लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम भेज दिया जाता था, उसमें आप लिखेंगे परम है जो धाम। दुर्गा पूजा, दुर्गा की पूजा। कुल देवी, कुल की देवी। पंचतंत्र, पांच तंत्रों का समूह। रोना धोना, रोना और धोना। उर्दू फारसी, उर्दू और फारसी। चाची ताई, चाची और ताई। छात्रावास, छात्रों के लिए आवास। कवि सम्मेलन यानी कवियों का सम्मेलन, कवि सम्मेलन यानी कवियों का सम्मेलन। अगला है जेब खर्च, जेब खर्च। इसका जब विग्रह करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, जेब के लिए खर्च, जेब खर्च यानी जेब के लिए खर्च, ठीक है। इसके अलावा भी आप चाहें तो और जो शब्द हैं पाठ में से ढूंढ के लिख के उनका विग्रह कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जैसे एक सत्याग्रह भी आया था, सत्याग्रह हो जाएगा सत्य के लिए आग्रह। जन्मदिन, जन्म का दिन। कृपा निधान, कृपा के निधान। और हो जाएगा प्रचार प्रसार, प्रचार और प्रसार। निराहार, बिना आहार, ये शब्द हो जाएंगे कुछ। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपके जो भाषा अध्ययन के प्रश्न हैं वो पूरे हो गए हैं। अब आते हैं पाठ्येतर सक्रियता पे। तो यहाँ पहला बिंदु है बचपन पर केंद्रित मैक्सिमम गोर्की की रचना मेरा बचपन पुस्तकालय से लेकर पढ़िए। ये एक किताब है जो आपको स्वयं पढ़नी होगी। फिर है अगला देखिए मातृभूमि अ विलेज विदाउट विमेन 2005। फिल्म देखें, मनीष झा द्वारा निर्देशित इस फिल्म में कन्या भ्रूण हत्या की त्रासदी को अत्यंत बारीकी से दिखाया गया है। मातृभूमि अ विलेज विदाउट विमेन, ठीक है, ये एक फिल्म है जिसमें आपको ये बताया गया है कि जो लड़कियों के भ्रूण को गर्भ में ही मार दिया जाता है ना, उनको जन्म ही नहीं लेने दिया जाता, उस विषय पे ये एक फिल्म बनाई है मनीष झा ने, जो आपको देखनी है, ठीक है। अगला है कल्पना के आधार पर बताइए कि लड़कियों की संख्या कम होने पर भारतीय समाज का रूप कैसा होगा। आप कल्पना करें और ये लिखें कि अगर हमारे देश में लड़कियां ना बचें या लड़कियों की संख्या बहुत ही कम हो जाए तो हमारे देश का, हमारे समाज का क्या हाल होगा, क्या इसमें जो क्या स्थिति हो जाएगी, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं, यदि हमारे यहाँ लड़कियों की संख्या कम हो जाएगी तो भारतीय समाज का रूप बहुत ही बुरा हो जाएगा या विकृत हो जाएगा, हमारे यहाँ सामाजिक संतुलन बिगड़ जाएगा। लोगों को ये सोचना चाहिए कि अगर आप लड़के पैदा करने की इच्छा रखते हैं तो उनकी शादी तो करेंगे ना, तो उनके लिए बहुएं कहाँ से लाएंगे, उनकी पत्नियां कहाँ से लाएंगे, और जब बहुएं नहीं मिलेंगी तो महिलाओं की खरीद फरोख्त की घटनाएं भी बढ़ सकती हैं, समाज में अनैतिकता, दुराचार, बलात्कार, अपहरण, ऐसी घटनाएं बढ़ जाएंगी, समाज अस्वस्थ हो जाएगा, इसमें व्यवस्था इतनी बुरी तरह बिगड़ जाएगी कि चारों ओर अशांति होगी, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी। और ये कहना गलत नहीं होगा या अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यदि लड़कियों की संख्या कम होती चली गई तो समाज में एक दिन ऐसा आ जाएगा जब लड़के अपनी पत्नी और बहन के लिए भी तरसेंगे, ठीक है। लोगों को ये सोचना चाहिए कि लड़के भी तो एक लड़की से ही जन्म लेते हैं, अगर लड़की ही नहीं होगी तो फिर लड़कों का अस्तित्व भी हम नहीं सोच सकते। लड़कियों के बिना मनुष्य का, चाहे वो लड़का हो या लड़की, का अस्तित्व ही संभव नहीं है। क्योंकि एक जो माँ होती है जो अपने बच्चों को जन्म देती है, चाहे लड़का हो या लड़की, वो स्वयं भी पहले एक लड़की, एक औरत ही होती है। ठीक है, चलिए अगले पेज पे आइए। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 76 पे यहाँ दिए गए हैं शब्द संपदा, यानी ऐसे शब्द पाठ के दौरान जो कठिन शब्द आए हो उनके सरल अर्थ यहाँ पे दिए हैं, जिनके अर्थ आपको समझ ना आ पाए हो, इनको मैं आपके लिए पढ़ दे रही हूँ, आप भी मेरे साथ साथ पढ़िए। परमधाम, परमधाम किसके लिए कहते हैं? स्वर्ग के लिए। प्रतिष्ठित यानी सम्मानित। नक्काशीदार, बेल बूटे के काम से युक्त। फूल, तांबे और रांगे के मेल से बनी एक मिश्र धातु। निराहार, बिना कुछ खाए पिए। पदक, प्रशंसा सूचक पुरस्कार, सोना चांदी या अन्य धातु से बना हुआ गोल या चौकोर टुकड़ा जो किसी विशेष अवसर पर पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। पदक, जिसे हम इंग्लिश में मेडल भी कहते हैं, ठीक है, जैसे गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल ऐसे कहते हैं ना, वही होते हैं हिंदी में पदक। स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक। प्रभाती, सवेरे गाया जाने वाला गीत। लहरिया, रंग बिरंगी धारियों वाली विशेष प्रकार की साड़ी जो सामान्यतः तीज, रक्षाबंधन आदि त्योहारों पर पहनी जाती है। वाइस चांसलर, वाइस चांसलर कौन होता है? कुलपति। ठीक है, अब है यह भी जाने, ये जैसा कि हर पाठ के अंत में आपको एक अतिरिक्त जानकारी दी जाती है, वैसे ही इसमें भी दी गई है स्त्री दर्पण। ये पाठ में आपने ध्यान दिया होगा कि महादेवी जी ने चर्चा की थी पाठ के बीच में कि वो स्त्री दर्पण नाम की एक पत्रिका में कविताएं या तुकबंदी अपनी भेजा करती थी, वो भी और कभी कभी सुभद्रा कुमारी चौहान भी। तो असल में इसी पत्रिका के बारे में यहाँ आपको जानकारी दी गई है कि स्त्री दर्पण क्या थी। ठीक है, इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाली यह पत्रिका श्रीमती रामेश्वरी नेहरू के संपादन में सन 1909 से 1924 तक लगातार प्रकाशित होती रही। स्त्रियों में व्याप्त अशिक्षा और कुरीतियों के प्रति जागृति पैदा करना उसका मुख्य उद्देश्य था। तो ये एक पत्रिका थी जो कि इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी, और इसका जो संपादन कार्य था वो कौन करती थी, इसकी संपादिका कौन थी? श्रीमती रामेश्वरी नेहरू, जिन्होंने सन 1909 से 1924 तक इसका संपादन कार्य किया। इतने बीच में, इतने सालों तक ये स्त्री दर्पण पत्रिका लगातार प्रकाशित होती रही थी। इसका उद्देश्य क्या था कि स्त्रियों में जो अशिक्षा, लोगों ने जो पढ़ाते नहीं थे, वो खत्म हो सके, लोगों में जागरूकता आए, स्त्रियों को पढ़ाया जाए, जो हमारी कुरीतियां हैं, बुरी परंपराएं हैं, उनको, उनका खंडन किया जाए, लोगों में जागरूकता पैदा की जाए और अच्छी अच्छी बातें लोगों को सिखाई जाए। यही सारी चीजें इस पत्रिका में होती थी, लेख भी होते थे, कविताएं भी होती थी, और इसी कविताओं के बीच महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान भी अपनी अपनी कविताएं भेजा करती थी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आपका पाठ है वो पूरा हो जाता है। अब हम मिलेंगे अगले ऑडियो में अगले पाठ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।